ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
हरे कृष्णा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स भी होते हैं मेरिट्स भी हैं डीमेरिट्स भी हैं एफएम चैनल की सुविधा यहां पर उपलब्ध करा कर दी गई है लेक्चर ही सुनना एक बार बेलगाम में किसी गांव में एक मेरा लेक्चर रखा हुआ था बहुत साल पहले जन्माष्टमी के लिए बेलगाम गया था मैं तो वहां पर एक किसी गांव में मुझे ले गए थे तो मंदिर में लेक्चर था और ऑडियंस सब अपने अपने घरों में थे तो मैंने पूछा कि ऑडियंस कहाँ है लेक्चर के बोले नहीं इनके लाउड स्पीकर बहुत पावरफुल हैं तो वो अपने अपने घरों में सुनेंगे आप बोलना शुरू कीजिए तो मुझे इस प्रकार से एड्रेस करना पड़ा जहां जहां आप लोग बैठे हैं मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट रूप में पता नहीं कहां पर हैं कौन हैं मनुष्य ही हैं तो शायद अगली बार से हमारे लेक्चर यहां पर भी ये शुरुआत हमको करनी होगी जहां पर भी आप हैं चाहे राधानाथ कृपा में हैं चाहे भक्ति वेदांत चाहे भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद दूर दराज के हमारे भक्त यदि सुन रहे हो तो आपका गीतामृत में स्वागत है तो पिछले 8 हफ्तों से हम ये प्रसिद्ध श्लोक ले रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम जहां भगवान ये ऐलान कर रहे हैं कि कोई सर्वसाधारण मनुष्य व्यक्ति भी कैसे न केवल भगवान को तत्वतः जान सकता है बल्कि उसके परिणाम स्वरूप वो कैसे भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकता है अर्थात भगवान स्वयं उसके हो जाते हैं तो क्योंकि इसमें भगवान ने एक ऐसा आश्वासन दिया है हम बद्ध जीवों के लिए कि इससे बड़ा आश्वासन या प्रॉमिस कोई अवतार नहीं दे सकता कि केवल जानने मात्र से भगवान को प्राप्त कर लेगा कोई केवल जानने मात्र से इससे सरल और क्या हो सकता है और हम लोग पिछले 8 हफ्तों से क्या प्रयास कर रहे हैं भगवान को तत्वतः जानने का प्रयास कर रहे इसलिए यदि आपको ये प्रश्न चिन्ह आ रहा है कि ये एक श्लोक इसमें इतना क्या है इसमें ये जो एक शब्द भगवान ने कहा है ना तत्वतः उसके लिए 8 लेक्चर कुछ भी नहीं है क्योंकि भगवान को तत्वतः जानने के लिए 8 सेशन क्या 8 हफ्ते क्या 8 महीने क्या 8 जन्म 8 जन्म भी कम है इसलिए हम क्या कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं भगवान को तत्वतः जानने का जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता और दिव्यता के पांच पहलू हमारे आचार्यों की टीका के अनुसार है, ये जनन वर्णन वंदन सांत्वन और गमन। और हम वर्णन, ये जो दूसरा पहलू, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो वर्णन में देवकी वसुदेव जी का वर्णन, देवकी यशोदा नंद और वसुदेव जी में अंतर क्या है, भगवान को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए देवकी ने हमें सिखाया, और भगवान की सेवा किस प्रकार से की जाए ये माता यशोदा हमें सिखाएंगे। 12 थिंग्स हाउ टू अचीव लॉर्ड कृष्णा। तो अभी तक हमने ये सारे मुद्दे चर्चा हम कर चुके हैं, हाउ कॉन्शियस वी आर अबाउट आवर सेल्स, प्लान एंड सिक्योर फॉर अस, मैनेज अवर ओन क्राइसिस, स्पेंड ऑन आवर सेल्स लाइक दोज हु लाइक अस, हाउ केयरफुल वी आर टू प्रोटेक्ट अवर ओन इमेज, हाउ पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड एम आई फॉर माई सेल्फ, हाउ आई ओवरलुक माई ओन फॉल्ट्स, how much I compromise and adjust for myself। तो हम अभी तक 9 मुद्दे चर्चा कर चुके हैं 12 में से, और तात्पर्य इसका क्या है, जिस प्रकार से हम अपने स्वयं के विषय में इतने जागरूक रहते हैं, अपने स्वयं के विषय में कितने चिंतित रहते हैं, इतने सतर्क रहते हैं, डिसिप्लिन, पंक्चुअल, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कैसे, पिछली बार हमने इसकी चर्चा की थी कि यदि हमारे अंदर खामियां भी हैं, हम जानते हैं, दूसरे तो जानते ही हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे अंदर खामियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, लेकिन कैसे हम सफाई पेश करते रहते हैं, हाउ वी कीप जस्टिफाइंग। तो ये स्लाइड फिर से हम लेंगे, व्हेन आई ब्रेक रूल्स आई एम बीइंग प्रैक्टिकल, मैं जब नियम तोड़ता हूं तो मैं व्यवहारिक हूं, आई एम बीइंग प्रैक्टिकल, और कोई नियम तोड़ता है लूज है कैरेक्टर में। व्हेन आई ओवरस्लीप आई वॉज टायर्ड, मुझे जरूरत है क्योंकि मैं थका हुआ था। When I criticize devotees, I am protecting the mission. When anyone else criticizes, he is doing Vaishnav अपराध, और मुझे उस वैष्णव अपराधी को ठीक करना, तो भगवान ने मुझे भेजा है। When I overeat, I am relishing prasadam, I am honoring prasadam. When someone else overeats, he is a glutton. यदि आपको समझ में नहीं आए तो देसी भाषा में उसको हौरट बोलते हैं। When I sleep during japa, I am in samadhi. अंग्रेजी में कहावत है, When you fart, it is obnoxious. When I fart, it is style. मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा। जब किसी को बहुत गैस हो जाती है, तो जब गैस होने के वजह से आप जानते हैं, तो हमारे बैच का एक लड़का था, वो इस प्रकार से कहा करता था, When you discharge gas, it is style. And when I discharge gas, it is missile. कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स याद रहते हैं, फिर भूलेंगे नहीं हम। मुद्दा क्या है, हाउ वी हैव टू फर्स्ट कन्फेस आई एम फुल ऑफ शॉर्टकमिंग। स्वीकृति देनी है हमारे अंदर जो खामियां हैं, उसको पहचानने की स्वीकृति हमें देनी है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं आज के अगले पॉइंट पर, हाउ मच डू वी टॉलरेट फॉर ourselves, हाउ मच डू वी टॉलरेट फॉर कृष्णा। टॉलरेंस, हिंदी में इसको कहेंगे सहनशीलता। एक व्यक्ति अपने परिवार को इंट्रोड्यूस कर रहा था, कहता है, ये हैं मेरी धर्म पत्नी, ये हमारी शक्ति हैं और मैं सहन शक्ति हूं। हम सब के अंदर, चाहे हम किसी भी स्तर के हों, किसी भी उम्र के हों, हम सब के अंदर सहन शक्ति है, सहनशीलता। जब स्वयं के ऊपर बात आती है तो हम इतने बड़े सहनशील हो जाते हैं। अब देखिए, बचपन से हम बड़े हुए, तो छोटा बच्चा, उसके अंदर सहनशीलता बिल्कुल नहीं रहती, थोड़ी थोड़ी बात पर रोने लग जाता, उसको गर्मी लगी रोने लग जाएगा, भूख लगी रोने लग जाए, ज्यादा खिला दो तो रोने लग जाए, कम खिलाओ तो रोने लग जाए, एक ही भाषा है छोटे बच्चे की, रोते रहो। कुछ भी आपको करवाना है, काम करवाना है, वो क्या करता है, उसको पता है कि मैं यहां से आवाज निकालता हूं सब हलचल मच जाती है। लेक्चर में भी होता है, उनको अगर हलचल मचाना है तो तुरंत रोना शुरू करें, हलचल मच जाएगी, सहनशीलता नहीं है। जैसे जैसे हम भी जब बच्चे थे, हम भी इसी प्रकार से व्यवहार किया करते थे, हम जब बड़े हुए, हमारे अंदर एक लक्षण बड़े होने का क्या है, बहुत से लक्षण हैं बड़े होने के, एक लक्षण आज के इस मुद्दे के संदर्भ में सहनशीलता। पंखा बंद कर दे अभी कोई, हम में से जो यहां वयस्क बैठे हुए हैं, अगर कोई रोना शुरू करे तो बगल में जो बैठा हुआ है वो सहन नहीं कर पाएगा, क्या इसके अंदर सहनशीलता क्यों नहीं है। इसको कहते हैं टॉलरेंस मसल्स। हम सब के अंदर ये शक्ति है, सहन शक्ति, धीरे 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 हम उसको उजागर करते हैं। और भारत में रहने के बाद तो बहुत सहनशील हो जाते हैं हम लोग, अलग अलग तरीके से। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि एक छोटी सी लड़की, उसके अंदर प्रकृति ने प्रसव वेदना की सहन शक्ति दे दी है, लेबर पेन, प्रसव वेदना जिसको कहते हैं, लेबर पेन की शक्ति उसके अंदर है, अभी उसे पता नहीं है, अभी वो छोटी सी बच्ची है, उसको अभी पता नहीं है। तो प्रभुपाद ये उदाहरण दिया करते थे कि पोटेंशियली शी हैज सो मच ऑफ टॉलरेंस विद इन हर विच शी हैज नॉट रियलाइज्ड एज ऑफ नाउ, बट व्हेन शी बिकम्स अ मदर द टॉलरेंस पावर इज एग्जिबिटेड टू इट्स फुलेस्ट। सो अ वुमन एग्जिबिट्स प्रसव वेदना, मैन प्रेशर वेदना, ऑफिस का प्रेशर, काम का प्रेशर, अलग अलग प्रकार के जो प्रेशर हैं, उसको वो सहन करने की शक्ति उसको मिलती रहती। बचपन में पता नहीं होता है कि क्या प्रेशर हो, स्ट्रेस किसको कहते हैं। खैर आजकल तो बच्चे भी स्ट्रेस में पाए जा रहे हैं, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट भी हो गए हैं आजकल। खैर चाइल्ड साइकेट्रिस्ट छोड़ दिए, डॉग साइकेट्रिस्ट हो गए हैं पाश्चात्य देश में, कुत्तों के साइकेट्रिस्ट। आप लोग पूछ रहे होंगे कि भाई कुत्ते को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा मानसिक तनाव उसको हो रहा है। तो जो वहां के कुत्तों के मालिक हैं वो अपने कुत्तों को डॉग साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं कि आजकल ये कुत्तों की तरह भौंक नहीं रहा, भौंकना बंद कर दिया इसे। तो वो लोग उनके अलग अलग, ये बहुत एक सीरियस उनको चिंता है ये कि उनके उनके कुत्ते मानसिक तनाव में न रहे। तो ये सारी जो चीजें कलयुग में हो रही हैं कि सहन शक्ति कम होते जा रही, जबकि सहन शक्ति जैसे हम शारीरिक रूप से बढ़े हमारी सहन शक्ति बढ़नी चाहिए। आजकल 21वीं सदी में यदि हम देखें तो हमारी सहन शक्ति कम क्यों होती जा रही है, क्योंकि हर चीज आरामदायक की जा रही है हमारे लिए और फास्ट। इसलिए जैसे हम अक्सर हमारे कॉर्पोरेट सेमिनार्स में ये एग्जाम्पल देते हैं कि आजकल टच बटन सिविलाइजेशन है, कि टच बटन, टच स्क्रीन, उसके ऊपर केवल आप टच करो और चीजें हो रही हैं, और उसमें एक अहंकार भी बढ़ जाता है कि देखो मेरे टच करने से पूरा स्क्रीन चालू हो गया, मेरे टच करने से आवाज निकलती है, मेरे टच करने से 10,000 मील दूर व्यक्ति वहां तक आवाज पहुंचती। और जब टच करने से कुछ होता नहीं है तो फिर सहन शक्ति, हम सहन नहीं कर पाते, क्यों नहीं हो रहा, तुरंत फोन करते, 5 मिनट से मैं टच कर रहा हूं फोन, तुरंत हमारे कस्टमर केयर को फोन करते, 5 मिनट से टच कर रहा हूं, ये कुछ प्रतिसाद नहीं दे रहा, यू बिकम रेस्टलेस, इनटॉलरेंट। तो जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां पर हमें हमारे इंद्रिय भोग, हमारी सफलता के लिए कुछ स्थितियों को सहन करना पड़ता है, तो हम बखूब ही सहन करते हैं। जैसे हम सब स्कूल कॉलेज में गए, कितना हमने सहन किया, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, सालों साल, एक साल, अब फर्स्ट स्टैंडर्ड में 10 क्लास ऐसे, उसके बाद में फिर वो 12th तक, उसके बाद में फिर कॉलेज, कितने साल वो पुस्तकों को पढ़ना, वो प्रोफेसर, वो लेक्चरर्स, उनके वो बोरिंग लेक्चर सुनना, एग्जाम, होमवर्क, ट्यूशन, कितना कुछ सहन किया। और ऐसा नहीं कि वो डिग्री प्राप्त करने के बाद अब बस वेकेशन है, नहीं, अब डिग्री प्राप्त कर ली, अब पूरा समाज पूछता है डिग्री का कर क्या रहे हो, नौकरी मिली कि नहीं मिली, 6 महीने हो गए इंजीनियर बन गया, 6 महीने हो गए डॉक्टर बन गया, कुछ प्रैक्टिस शुरू हुई कि नहीं, नौकरी लगी कि नहीं, नौकरी फिर, और फिर नौकरी की बात सुनते ही शुरू में बहुत अच्छा लगता है कि नौकरी लग गई, पेड़े वेड़े बांटते हैं, फिर जो दौर चालू होता है किसका, सहन शक्ति का जो दौर चालू होता है, हर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे तक, फिर एक दिन या दो दिन छुट्टी मिलती है और वो छुट्टी में भी फिर घर पे काम करना पड़ता है, ये किराना लाओ वो लाओ हफ्ते भर का सब कुछ, फिर मंडे से शुरू सालों साल वो। तो यदि हम देखें हमने कितना, और हाल ही में मुंबई में मैं कुछ लेक्चर्स दे रहा था तो वहां पर लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या स्पिरिचुअल लाइफ खतरा मोल लेना नहीं है, रिस्क लेना, हिंदी में उसको ये कहेंगे खतरा मोल लेना। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जैसे आपने जॉब छोड़ दिया, वो भी जब आप आपकी युवावस्था में थे, ऐसा प्रॉमिसिंग कैरियर छोड़ दिया, और क्या उसमें इतना बड़ा आपने अनकैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया? तो उत्तर में मैंने उनसे पूछा, मुझे बताइए कि हम लोग भगवान के शाश्वत संसार को छोड़कर आए, इतना बड़ा रिस्क हमने तब ले लिया, कितना बड़ा रिस्क लिया हमने, हमारे स्वयं के घर भगवत धाम को, गोलोक वृंदावन धाम को हम छोड़कर इस भौतिक संसार में जो कि असत अचित निरानंद है, ये जो शरीर हमारा, ये पूरा संसार, सारे तत्व, पूरा संसार, इसके विषय में बताया गया है कि पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर पग पर खतरा। 2 हफ्ते पहले केकेवा कॉलेज में हमारा प्रोग्राम चल रहा था, एक युवती गर्ल्स हॉस्टल में शायद 18-19 साल की होगी, आत्महत्या कर ली। क्यों आत्महत्या? किसी लड़के के साथ उसका संबंध, फोन पर झड़प हुई, टच स्क्रीन, तो लड़के ने कहा ठीक है मैं आता हूं, हम लोग बैठकर सुलझाते हैं समस्या को। लड़का निकला, रास्ते में गंगापुर रोड से वो निकला, रास्ते में एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। लड़की को जब पता लगा कि मेरे से मिलने के लिए ये निकला था तो इसके मौत की जिम्मेदार मैं हूं, तो उसने अपने आप को खत्म कर दिया, पंखे पर लटका। तो यहां पर क्या इस संसार में केवल हम आए, इससे बड़ा खतरा जो हमने मोल लिया कोई हो सकता है? और ये भी नहीं कि यहां पर आने के बाद हमने एहसास कर लिया कि भाई अब गलती हो गई, नहीं, यहां पर लगता है कि जब कोई भगवान को शरणागत होता है तो लोग कहते हैं कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद है खेकड़ों का उदाहरण दिया था हमने पिछली बार, एक भी खेकड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बाकी खेकड़े गलती कर रहा है, बाहर निकलने की तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हम तेरे शुभचिंतक हैं, तुझे ये गलती नहीं करने देंगे कभी, आ नीचे। ऐसे तो समाज में हम जी रहे हैं और ऐसे समाज में हम अपना भी योगदान देते रहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि जब मैंने मेरे जो सुपीरियर अथॉरिटीज थे उस समय जब मैं नौकरी कर रहा था, जब मैंने उनको कह दिया कि मुझे नहीं करनी ये नौकरी, तो बहुत से प्रश्न पूछे गए, इंट्रोगेशन, इंटरव्यूज वगैरह। अब उनको मैं सीधा तो नहीं कह पाता था कि भाई मुझे ब्रह्मचारी बनना है, परंतु उनको थोड़ा अंदाजा आ गया था कि कोई ठोस कारण नहीं दे रहा है ये छोड़ने का। तो उन्होंने साइकेट्रिस्ट को रेफर कर दिया मुझे कि शायद मानसिक संतुलन बिगड़ गया है इसका, ये भाग गया है, ये बच्चा है, केवल 22 साल का है, बच्चा है, भाग गया है। तो एक साइकेट्रिस्ट जो एयरफोर्स के साइकेट्रिस्ट को रेफर किया कि भाई इसका संतुलन ठीक कीजिए, मानसिक संतुलन ठीक कीजिए इसका। तो वो अलग अलग प्रश्न, तो फिर बताओ कि तुम करोगे क्या, अभी तुम 22 साल के हो, तुम छोड़ के जा रहे हो सब कुछ, क्या करोगे बताओ। तो एकदम वो जैसे कोई एकदम मैच्योर्ड कोई पिता अपने बेटे से बात करता, बेटा बैठो बेटा, ऐसे बेटा बेटा करके। तो मैंने कहा कि समाज की सेवा करूंगा। अच्छा अच्छा, समाज की सेवा, तो अभी क्या कर रहे हो, अभी भी तो तुम समाज की सेवा कर रहे हो। उसके पॉइंट्स काफी वैलिड थे, तो मैंने अपना क्लासिक आंसर दिया, हमारे भारत की जो संस्कृति है उस संस्कृति का बलात्कार हो रहा है पाश्चात्य देश जो कर रहा है। तो उसने हमारी संस्कृति को संभालना है और उसकी रक्षा करनी है, तो मैं हमारी भारत देश की सीमाओं के अंदर आना चाहता हूं। घुसपैठिए अंदर घुस चुके हैं, चोर अंदर हैं। तो अलग अलग प्रकार से, तो उसने उसके किताब से निकाला, उसने जो भी उसकी रिपोर्ट बनाई, तो उसकी रिपोर्ट में उसने लिखा, ही इज अ पेशेंट ऑफ रिस्क एडिक्शन सिंड्रोम। ये एक साइकेट्रिक टर्म है, मुझे भी नहीं पता था। तो उसने वो रिपोर्ट में लिख दिया कि ही इज नॉट क्रेजी, ही इज नॉट मैड। काफी एक हफ्ते तक सेशंस चले उसके साथ मेरे। तो एक हफ्ते बाद उसने वो रिपोर्ट में लिख दिया, दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रिस्क एडिक्शन सिंड्रोम। काफी मेरे को इंटरेस्टिंग लगा वो टर्म, RAS, रास। तो मैं सोच रहा था जैसे गोपियों ने रास लीला में भाग लेने के लिए भी रिस्क लिया बहुत बड़ा, इवन दो गोपीज वर सफरिंग फ्रॉम साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू रिस्क एडिक्शन सिंड्रोम। तो अब आज मैं ये रिस्क एडिक्शन सिंड्रोम के ऊपर वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको। पहले रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो है ये, अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं हो जाएंगे, रोमांच इस संसार में लोग, जैसे कि हम कह रहे हैं टेकिंग रिस्क फॉर कृष्णा, बीइंग टॉलरेंट फॉर कृष्णा, Having that potential within us, इस व्यक्ति ने, इस शख्स ने जो कर दिखाया, गिनेस बुक में इसका नाम गया है, जिसको हिंदी में कहते हैं हैरत अंगेज, सुना है, हैरत अंगेज, इस प्रकार का कारनामा। लेकिन हम सीखेंगे क्या, वो पहले बता दे रहा हूं आपको। हम सीखेंगे ये कि यदि एक मनुष्य इस संसार में इतना बड़ा रिस्क अपने जीवन को लेते हुए ले सकता है, तो हम भगवान के लिए क्यों नहीं। तो इसे ध्यान में रखना देखते समय, डोंट गेट कैरिड अवे।
this mental game, you know. It's not the same with a leash, but it really is. You just kind of play a little trick on yourself and slip the leash off and do the same thing I just did for half a dozen times before.
अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या जरूरत थी? अंग्रेजी में एक टर्म है एड्रेनलिन रश, इसको कहते हैं, पता नहीं हिंदी में इसको अनुवाद कैसे करें। कई होते हैं जिनके अंदर यही रिस्क एडिक्शन सिंड्रोम, कि जब तक उनको किक नहीं मिलता इसके कुछ कर ऐसा कर कर, मैं कर सकता हूं। तो प्रश्न है, क्या अब डेफिनेटली ये व्यक्ति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम आ गया और देश विदेश में ये इतना प्रसिद्ध हो गया। हम हमारे जीवन में जो विभिन्न प्रकार के हैरतअंगेज कार्य करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमें भी इतनी बड़ी पहाड़ की चोटी से ऐसे चलना है, या इसी को हैरतअंगेज कहा जाएगा। जैसे हमने कहा, हम लोग भगवान की शरण को छोड़े एक एक जन्म में भ्रमण कर रहे हैं, इंद्रिय भोग करते हुए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे बड़ा हैरतअंगेज, रोंगटों को खड़े करने वाला और खतरनाक रिस्क नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, फॉर अ ह्यूमन सोल टू ग्लाइड डाउन इनटू द एनिमल स्पीशी इज द ग्रेटेस्ट रिस्क। और कितने मनुष्य चिंता कर रहे हैं, हम लोग रोज कितनी चिंता करते हैं कि कहीं मेरा ये मनुष्य जीवन अगले जन्म में मुझसे कोई छीन न ले। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस मनुष्य जीवन के अलावा और कोई रास्ता नहीं भगवत धाम जाने का। ये खाई तो कुछ नहीं है, 84 लाख योनियों में भ्रमण, वो जो चक्र है, वो जो भवसागर की जो गहराई है, अतः फैदमलेस मटीरियल ओशन कहा गया। तो हम कुछ उदाहरण लेंगे कि कैसे भगवान के शुद्ध भक्तों ने ये उदाहरण स्थापित किया कि भगवान को प्राप्त करने के लिए किस हद तक वो गए। सबसे पहला उदाहरण पांडवों का, हाउ मच दे टॉलरेटेड, बचपन से लेके अंत तक उनके जीवन में केवल तकलीफें ही तकलीफें। भीष्म पितामह यहां तक कह दिए कि युधिष्ठिर, सभी पांडवों को भीष्म पितामह कह रहे हैं युधिष्ठिर को उल्लेख करते हुए कि आप पांडवों को यदि कोई देखेगा कि आप लोग भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में इतना रहे, उनके भक्त रहे, उनकी भक्ति की, तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग कृष्ण की भक्ति करेंगे, क्योंकि आपके जीवन को यदि कोई पढ़ेगा कि कृष्ण साथ होने के बावजूद उनके जीवन में इतनी तकलीफें, तो भाई हरे कृष्णा। परंतु पांडवों का एक ऐसा उदाहरण भगवान ने स्थापित किया कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, पांडवों ने कभी समझौता नहीं किया। और यदि हमें गोलोक वृंदावन को प्राप्त करना है, शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना है, तो भगवान ने पांडवों के द्वारा प्रस्थापित किया कि समझौते का जीवन, कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ इज नॉट द टिकट टू गो बैक होम बैक टू गॉडहेड। अनकॉम्प्रोमाइज्ड सरेंडर, दैट इज द प्राइस। तो पांडवों के उदाहरण में अब देखिए, 13 साल वनवास, और ये ऐसे क्षत्रिय कि पूरा विश्व, अर्जुन एक ऐसे धनुर्धर थे कि पूरा विश्व अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा, न केवल उनकी कुशलता के लिए बल्कि उनके चरित्र के लिए उनका आदर सत्कार किया करते थे। युधिष्ठिर धर्मराज, द्रौपदी जैसी पतिव्रता स्त्री, हालांकि द्रौपदी का विवाह 5 पुरुषों के साथ हुआ, फिर भी द्रौपदी की मिसाल दी जाती है, किस लिए? पतिव्रता स्त्री होने के लिए। ऐसी द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का षड्यंत्र आजकल भी नहीं सुनने में आता। भरी सभा में, उस असत सभा में, बुजुर्गों के सामने क्या क्या सहन नहीं करना पड़ा द्रौपदी। ऐसा नहीं कि, और युधिष्ठिर ने दांव पर लगाया था, द्रौपदी ने पूछा कि भाई जब युधिष्ठिर हार गए तो मुझे कैसे दांव पर लगाए। आजकल की कोई स्त्री होती तो सबसे पहले तलाक दे देती कि भाई दुशासन को कहती मैं तो यहीं पे पहले तलाकनामा साइन करो, कोई जरूरत नहीं, मुझे ऐसे पति नहीं चाहिए। कितना सहन किया द्रौपदी ने, कुंती ने, पांडवों ने, सबने मिलकर। कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने वही किया जो भगवान चाहते थे। और धृतराष्ट्र वो हर समय, हालांकि ऐशोराम के जीवन में वो राज्य राजसी ठाट बाट में रह रहा था, परंतु उसने, वो जानता था कि सही क्या है। दुर्योधन भी जानता था, जानामि अहम् धर्म न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, मेरे अंदर कोई प्रवृत्ति नहीं हो धर्म पालन करने की। जानामि अहम् अधर्म न च मे निवृत्ति, मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, मैं नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूं कृष्ण कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, नहीं कर सकता मैं आपकी भक्ति, मुझे मेरे ऐशो आराम चाहिए। तो क्योंकि धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी इत्यादि ये सारे भगवान कि इच्छा को अपनी इच्छा नहीं बनाएं, इसलिए उन सब का संहार भगवान ने पांडवों के द्वारा कराया। क्योंकि भगवान ने फिर अंत में यही प्रस्तापित किया कि जो भक्त मेरे लिए सहनशील होते हैं उनको मैं स्वयं अपने आप को दे देता हूं। तो यह है परिणाम भगवान के लिए सहनशील होने का। प्रहलाद महाराज 5 वर्षीय किनसे घिरे रहते थे 24 घंटे? कोई भक्त नहीं था वहां पर, चारों ओर केवल हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु के पार्षद, राक्षसी प्रवृत्ति वाले। यहां तक कि यह भी सुनने में नहीं आता कि प्रहलाद की जो मां है वो प्रहलाद महाराज को अकेले में भगवान की भक्ति करने के लिए कुछ सुविधा प्रदान करती थी, यह भी सुनने में नहीं आता। तो ये प्रहलाद क्या कुछ नहीं उन्होंने सहन किया। और जब तक भगवान वहां पर प्रकट नहीं हुए, भगवान ने जब तक प्रहलाद महाराज को उस चंगुल से नहीं छुड़ाया, प्रहलाद महाराज ने अपनी भक्ति को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सहन करते गए, मृत्यु दंड तक उन्होंने सहन किया। यह है प्रहलाद महाराज। और उम्र क्या है यह जान लीजिए, 5 वर्षीय प्रहलाद, केवल 5 वर्षीय प्रहलाद, बस यह उनकी उम्र है। ऐसी उम्र में ऐसी सहन शक्ति उन्होंने जो दिखाई, ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है चैत्र चरितामृत में। वासुदेव नाम के भक्त हुए चैतन्य महाप्रभु के, जिनको कुष्ठ रोग कहते हैं, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग उनको हुआ। और इनको ऐसा कुष्ठ रोग हुआ था कि ये जिस प्रांत में रहते थे वहां के नागरिक वासुदेव की परछाई को भी नहीं छूना चाहते थे। होता है जब कुष्ठ रोगी जो होते हैं कैसे लोग दूर रहते हैं उनसे, तो इनका कुष्ठ रोग ऐसी गहन अवस्था का था कि इनके हरेक रोम छिद्र, हमारे बाल कहां से उगते हैं, रोम छिद्रों से, हरेक रोम छिद्र पस से भरा हुआ था, ऐसा कुष्ठ रोग इनको हुआ था। हरेक रोम छिद्र पस से भरा हुआ और उनमें कीड़े, जीवित कीड़े रेंगते हुए। और जब भी कोई एक कीड़ा, इतने सारे कीड़े उनके पूरे शरीर में, जब भी कोई एक कीड़ा नीचे गिर जाता रेंगते रेंगते, वासुदेव उस कीड़े को वापस उठाते, वापस से उस घाव में, उस कुष्ठ रोग के घाव में वापस से डालते। क्या उनकी भावना थी कि मेरा शरीर और किसी काम का तो नहीं है, कम से कम ये कीड़े के तो काम आए। इसको कहते हैं सहन शक्ति की पराकाष्ठा। और जब चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि अंतर्यामी है, जानते थे, जब वो वहां पहुंचे जहां वासुदेव इस प्रकार का जीवन जी रहे थे, और एक ही आकांक्षा में कि जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आएंगे तो केवल उनका दर्शन मैं दूर से कर लूं, बस मेरे जीवन की परिपूर्णता उसी में मुझे प्राप्त हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु आगे निकल चुके थे, लौट कर आए, क्योंकि वो वासुदेव से मिल नहीं पाए, इसलिए अपनी यात्रा में आगे जो निकल गए, लौट कर आए वासुदेव के समक्ष, जिसकी परछाई तक को कोई छूना नहीं चाहता था, चैतन्य महाप्रभु जो कि गौरांग वर्ण वाले, इतने सुंदर, उन्होंने आलिंगन किया, वासुदेव को आलिंगन किया। और आलिंगन करते समय वासुदेव के शरीर के हरेक रोम छिद्र में जितना पस था, जितने कीड़े थे, वो सब चैतन्य महाप्रभु के शरीर के ऊपर लगने लगे। और सभी जब चैतन्य महाप्रभु को ये करता हुआ देखे तो उनका हृदय रुक गया, हार्ट बीट स्टॉप्ड, उनके हृदय की धड़कन रुक गए। देखा नहीं गया उनसे। और चैतन्य महाप्रभु उनका यह अनुमोदन था कि आज दिन तक मुझे आलिंगन करने में इतना आनंद नहीं मिला जितना आज मिल रहा है वासुदेव, तुम्हारे इस शरीर को मैं आलिंगित कर रहा हूं। और हुआ क्या कि वासुदेव का शरीर भगवान के स्पर्श से इतना सुंदर बन गया, निरोगी, न केवल निरोगी बल्कि सुडौल, इतना सुंदर शरीर वासुदेव को प्राप्त हो गया भगवान की कृपा के वजह से। अब सबसे गहन मुद्दा सुनिए इस लीला का। इतना सुंदर शरीर वासुदेव प्राप्त करने के पश्चात कोई और व्यक्ति होता तो क्या प्रतिक्रिया उसकी होती? जश्न मनाता। वासुदेव वो मायूस हो गए और सभी उनको देखने लगे कि ये जिनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई और इतनी प्रसिद्धि, न केवल ऐसा शरीर, न केवल ऐसा स्वास्थ्य, न केवल ऐसी सुंदरता, बल्कि इतनी प्रसिद्धि कि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान युगावतार ने उनको आलिंगन कर ऐसी कृपा दी है, ये मायूस हो गए और ये चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, भगवान आपने क्या किया, ये आपने मुझे कैसी सजा दी है? अब देखिए उसको सजा कह रहे हैं, आपने मुझे ये सुंदर स्वरूप देकर आपने मुझे दंडित कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब इस सुंदर शरीर को लेकर जब भी मैं जहां पर भी घूमूंगा लोग इतनी वाहवाह मेरी करेंगे। ये जो अभिमान का कुष्ठ रोग होगा, ये जो अभिमान का पस और ये जो अभिमान के कीड़े मेरे अंदर रेंगेंगे, मैं उससे कैसे बचूंगा? इसे कहते हैं शुद्ध भक्त का दृष्टिकोण। शुद्ध भक्त का दृष्टिकोण इस प्रकार का होता तो वो अपनी नम्रता को, अपने निस्वार्थ नम्रता को मेंटेन करने के लिए कुष्ठ रोग अपने शरीर पर बरकरार रखना चाहते थे, उसे सहन करने में उनको तकलीफ नहीं हो रही थी, उन कीड़ों को सहन करने में उनको तकलीफ नहीं हो रही थी। उनको तकलीफ कहां हुई कि अब जो मुझे नाम प्रतिष्ठा मिलेगी उसको भगवान मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा कि यदि मैंने तुम्हें बाहरी रूप से इतना सुंदर बनाया है तो मैं आंतरिक रूप से अपनी शक्ति देता हूं कि तुम कदापि अपने भक्ति से पथभ्रष्ट नहीं हो। देखिए हां, हम लोग शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान को शुद्ध चेतना से सेवा करना चाहते हैं, परंतु हम जानते हैं कि जब हमारी व्यवस्था सब ठीक हो तब हम ठीक से भगवान की भक्ति करते हैं। हाँ, हमारी वो स्थिति है, परंतु ऐसे उदाहरण कि यदि आगे चलकर भगवान हमें इस दर्जे तक टेस्ट करें और जब हम वासुदेव कुष्ठ रोगी उस दर्जे के टेस्ट को जब पास करेंगे तब जाकर भगवत धाम में एंट्री मिलने वाली है। आप लोग कहोगे मतलब क्या है आपके कहने का, कि मुझे कुष्ठ रोगी बनना चाहिए, कीड़ों को उठा उठा के वापस डालना चाहिए? अरे हम तो एक थ्रोट इंफेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक, क्या है वो कीड़ों को मारने वाला, सब इतनी दवाइयां लेना शुरू कर दे कि थोड़ा भी कुछ तकलीफ हमको नहीं होनी चाहिए। तो भगवान जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, इसलिए भगवान ने हमको कह दिया भाई तो हरे कृष्ण महामंत्र जब करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे, सालों साल जन्मों तक हम जब करते रहेंगे करते रहेंगे, यदि हम उस चेतना में भी आ जाएं, इसलिए फलस्तुति इस कथा की ये बताई गई है कि यदि वासुदेव ऐसे भक्त की कथा का श्रवण कीर्तन भी शुद्ध तरीके से हम कर लें तो चैतन्य महापुरुष कहते हैं कि मैं उद्धार कर दूंगा। यदि हम शुद्ध भाव से उनको अपना महाजन माने, किसको हम महाजन मानते हैं आजकल, हु आर आवर रोल मॉडल्स, ये क्रिकेट प्लेयर, ये सिनेमा स्टार, यदि आप किसी को कहो कि आज से मेरे रोल मॉडल हैं वासुदेव द लेपर, कोई पूछे कौन है भाई, जिनको कुष्ठ रोग हुआ था, रोम छिद्र पस से भरा हुआ, कीड़ों से भरा हुआ, उठा उठा कर वह कीड़ों को वापस रख रहे, ये सुनेगा वो व्यक्ति दूर हट जाएगा हमसे, भाई मानसिक संतुलन। भगवान शिवजी, हमने इनका उदाहरण दो कारणों के वजह से लिया है, कल हम सब ने महाशिवरात्रि मनाई और दूसरा कारण क्योंकि शिवजी के विषय में हम चर्चा कर सके, हमने सोचा कि आज के हमारे गीतामृत कार्यक्रम का ये भाग हम महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिवजी का गुणगान करते हुए करें। तो भगवान शिव जी के विषय में कहा गया है कि जितने सारे देवताओं को ले लो, हालांकि वो देवता तो है नहीं, गुणावतारों को भी ले लो, भगवान के जितने वैष्णवों को ले लो, भगवान के शुद्ध भक्तों में से शिव जी जितने सहनशील कोई नहीं, शिव जी जैसे सहनशील वैष्णव न कोई हुए न कोई होंगे। और वो कैसे हैं, बहुत सी उनकी बहुत से सारी लीलाएं हैं उनकी, परंतु आज हम सर्वप्रथम भगवान शिव जी जिन्होंने समुद्र मंथन के पश्चात हलाहल विष को अपनी हथेली में लेकर पूरे ऐसे हलाहल विष को पिया, और वो भी कौन से समय, जब बाकियों को अमृत मिल रहा था, इनसे जो जूनियर हैं सारे देवता, राक्षस तो छोड़ दीजिए, बाकी सारे देवता जो इनसे जूनियर हैं वो सब तो अमृत का फीस्ट करने वाले हैं, और शिवजी जो कि महादेव हैं, देवादिदेव महादेव शिवजी को क्या दिया, उनको पीने के लिए क्या दिया, हलाहल विष। और ये हलाहल विष क्या था, ये हलाहल विष हमारे आचार्य कहते हैं भौतिक संसार पृथ्वी और पृथ्वी से नीचे जितने नरकीय लोक हैं उनमें जितने पापी हैं, पृथ्वी पर और पृथ्वी से नीचे जितने पापी हैं उनका जितना भी पाप अब तक उन्होंने जो किया वो सब के पाप का समन्वय था ये हलाहल विष जो उन्होंने पिया। इसलिए भगवान शिवजी के विषय में जब ये विष पी रहे हैं तो भगवान शिवजी के विषय में सुखदेव गोस्वामी ऐसा सुंदर श्लोक कहते हैं आठवें स्कंद में, तप्यन्ते लोक तापेन साधव प्रायशो जन परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य खिलात्मनः। बहुत ही सुंदर श्लोक है, भगवान शिवजी का गुणगान करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि शिवजी जैसे जो साधु पुरुष होते हैं, साधव प्रायशो जना, हर समय उनका प्रयास क्या होता है, तप्यन्ते लोक तापेन, हम जैसे बद्ध जीव जो तप रहे हैं इस भौतिक संसार में, हम जो तप रहे हैं, हम जैसे बद्ध जीव, हम जैसे पापी जीव जो तप रहे हैं हमारे पाप के कारण, हमारे इंद्रिय भोग के कारण, ऐसे तपे हुए पापी जीवों का तपन दूर करने के लिए जो तपते हैं वो है शिव जी. बोलो महादेव शंभु की. तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायशो जनः. ऐसे हैं साधु, ऐसे इनका प्रयास होता है, ऐसे साधु पुरुष जैसे कि शिव जी. और इस श्लोक में कहा गया है परम आराधनम, कि यदि भगवान विष्णु की कोई परम आराधना करना चाहता है तो शिव जी की तरह करें, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि शिव जी से बड़े वैष्णव और कोई नहीं. और ये जो भाव शिव जी रखते हैं कि हम जैसे बद्ध जीवों का तपन दूर करने के लिए जो तपते हैं ऐसे साधु पुरुष भगवान शिव जी वो परम आराधना में लगे हुए हैं इस प्रकार की भगवान विष्णु के. तो आज हम हमारा ये सेकेंड भाग लेक्चर का टॉलरेंस, इस मुद्दे को लेकर भगवान शिव जी इनके विषय में आदिशंकराचार्य कौन ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं आदिशंकराचार्य के अलावा. तो उनके शरीर में जो चिन्ह है वो अलग अलग चिन्ह हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं. कितनी बार हमने, जैसे यहां पर आप देखिए बहुत ही क्लासिक भगवान शिव जी की मुद्रा दिखाई गई है. तो शिव जिसका अर्थ है परम मंगलमय, सुप्रीमली ऑस्पिशियस, शिव का अर्थ ये है. तो उनके शरीर पर जो ये इतने सारे चिन्ह जैसे कि त्रिशूल है, सर्प है, डमरू है, अर्धचंद्र नहीं, क्रेसेंट मून क्या कहते हैं, चंद्रकोर, ये सारे जो चिन्ह हैं कुल मिलाकर 10 आदिशंकराचार्य ने उन्होंने लिस्ट दी है 10 चिन्ह. तो हम एक एक चिन्ह से क्या क्या शिक्षा भगवान शिव जी हमें दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब क्या बनना चाह रहे हैं, वैष्णव बनना चाह रहे हैं. वैष्णवानाम यथा शंभु, परम वैष्णव भगवान शिव जी हैं. तो वो अपने उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं कि हमें यदि वैष्णव, परम वैष्णव बनना है, या परम वैष्णव तो नहीं, परम वैष्णव का दास, अनुदास अनुदास, तो हमें क्या उनसे एक एक सिंबल क्या क्या है पहले हम देख लेंगे. स्नेक्स अराउंड शिवाज नेक, क्या तात्पर्य है उसका. एशेस स्मियर्ड ऑल ओवर हिज बॉडी, कब्रिस्तान की राख लगाए हुए, त्रिशूल इन हिज हैंड, डमरू स्टक टू दैट त्रिशूल, रुद्राक्ष बीड्स ऑल ओवर हिज बॉडी, क्रेसेंट मून ऑन हिज हेड, नंदी द बुल वाहन, डियर स्किन एज द ओनली पीस ऑफ क्लॉथ, नीलकंठ भगवान का एक और नाम है, और फाइनली गंगा जो कि उनके जटाओं से हम तक पहुंच रही है. तो आप लोग तैयार हैं, महाशिवरात्रि मनाएं. तो सबसे पहले प्रश्न कि ये जो भगवान शिव जी के चारों ओर उनके शरीर पर इतने सारे सर्प, वाई स्नेक्स. स्नेक्स आर अ सिंबल ऑफ अवेयरनेस, शंकराचार्य कहते हैं. You can't be asleep with a snake around your neck. बहुत ही सुंदर, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, कितनी बार देख लिया कि हाँ, कभी कभी बचपन में हम पेंटिंग बनाते थे शिव जी की, तो भाई बिना सर्पों के शिव जी कंप्लीट नहीं हो सकती पेंटिंग, सर्प तो बनाना ही है. बहुत से पुराने वो जो धार्मिक पिक्चरें होती थी उसमें वो सर्प लटका दिया जाता था और वो सीन शुरू होने से पहले उसको हिला के चला जाता था डायरेक्टर, हिलता रहता था. तो हमको इतना ही पता था शिवजी मतलब इधर उधर सब सांप होने चाहिए. उसका तात्पर्य बता रहे हैं कि हमको हमारे जीवन में शिव जी की तरह ये नहीं कह रहे हैं कि अभी पकड़ पकड़ के सांप बांधते रहो सब जगह, लेकिन उसके पीछे जो शिक्षा है, शिक्षा क्या है, हर समय जागरूक रहना। किस विषय में जागरूक रहना? हमारे मनुष्य जीवन के उद्देश्य के विषय में जागरूक रहना, अवेयरनेस। जैसे कि मान लो हम लोग सब यहां पर इत्मीनान से बैठे हुए हैं, अचानक खुदा ना खास्ता जो कहते हैं कोई सर्प आ जाए, चाहे 8:30 से 8 बजे से लेके कोई सो रहा हो अब तक, चाहे कितनी भी गहरी नींद में हो, यदि यहां पर हो हल्ला मच जाए कि सांप आ गया है तो क्या होगा, आंखें फाड़ फाड़ कर ढूंढेंगे या भागेंगे। राधानाथ महाराज अपने एक प्रवचन में कह रहे थे, उन्होंने एक बार बॉम्बे के लोकल ट्रेन को देखा कि रश आवर में लोकल ट्रेन में लोग कैसे अंदर घुसने के लिए इतने तत्पर होते हैं, और जैसे ही उनका स्टेशन आ जाता तो बाहर आने के लिए कितने तत्पर होते हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया, When I saw them entering into the local train, I thought as if somebody was distributing free gold inside. मुफ्त में कोई सोना बांट रहा है, ऐसे लोग कूद रहे हैं अंदर कि ये ट्रेन के अलावा मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, वो बोगी उसके अंदर वो बेंच, वो सीट, वो लकड़ी का फाटका, उसके ऊपर बैठ जाऊं मैं, बस जीवन की परिपूर्णता प्राप्त कर ली है मैंने। और जब स्टेशन आता है तो महाराज कह रहे थे कि जब लोग बाहर आते हैं तो कैसे ऐसे बाहर आते हैं, मान लो किसी ने टोकरी भरकर सांप फेंक दिए हो उसके अंदर, सब जगह सांप घूम, कैसे लोग बाहर आएंगे बोगी से, वैसे लोग बाहर। तो मुझे पॉइंट याद आ गया। तो यहां पर जब भी अब अगली बार से हम शिवजी के शरीर पर इन सर्पों को देखें तो हमें हमारा जीवन ऐसे इनविजिबल अदृश्य सर्पों को अपने चारों ओर लगाकर घूमते रहना चाहिए। क्यों? ताकि हम अवेयर अलर्ट रहें। तो ये सबसे पहला चिन्ह जिसके विषय में बताया गया है। अब दूसरा चिन्ह, ये जो राख, भगवान शिव जी जो राख लगाए हुए हैं अपने पूरे शरीर पर, ashes all over his body, इसका तात्पर्य क्या है? To remind us of the impermanence and futility of materialistic life। और कौन सी राख लगाते हैं? चूल्हे की नहीं, ऐसा नहीं कि पार्वती ने जो चूल्हे में चपाती बनाई उसमें से जो राख बच गई तो भगवान ने कहा थोड़ी राख लाओ, वो नहीं, कब्रिस्तान की, कब्रिस्तान नहीं, शमशान भूमि, वहां पर जलते हैं मुर्दे, वहां जलते हैं। तो जहां कब्रिस्तान में मुर्दे जलते हैं, अभी मान लो आपको कहीं पार्टी वार्टी में जाना है, पाउडर वाउडर लगा के लोग जाते हैं ना, तो आप अमरधाम जाओ, यहां नासिक में अमरधाम जाकर वहां पर जितने मुर्दों की आज के फ्रेश राख या पुराने हफ्ते भर की जो राख है वो इकट्ठा करो, उसको पॉन्ड्स के डब्बे में भर भर के लगा लुगो के। दैट इज द कॉस्मेटिक ऑफ लॉर्ड शिवा, स्मशान भूमि की राख। तो कोई उनको उसमें कोई शौक नहीं है, वो हमको सिखा रहे हैं, ये सब कुछ हमको सिखाने के लिए भगवान शिव जी हमको सिखा रहे हैं कि समझ लो इस भौतिक संसार में कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, सब कुछ राख बनने वाला है। यहां पर क्या होने वाला है? सब कुछ राख होने वाला है, खाक में मिलने वाला है। एक बार एक व्यक्ति एक साधु पुरुष के पास गए और उनसे आशीर्वाद मांग रहे थे, अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद मांग रहे थे कि मुझे एक ऐसा शरीर दीजिए जो हर समय मेरा साथ दे, मुझे एक ऐसी पत्नी जी दीजिए जो उम्र भर मेरी साथ दे, ऐसे बच्चे दीजिए, ये दीजिए सब उम्र भर। तो साधु परेशान हो गया कि ये क्या मांग रहा है मुझसे, चल मेरे साथ मैं तुझे दिखाता हूं कुछ। तो एक स्मशान भूमि के पास इस व्यक्ति को ले गए साधु पुरुष। तो डर गया, स्मशान मुझे, हाँ मैं तो ऐसे ऐसे वरदान मांग रहा था कि मुझे उम्र भर सब मेरा शरीर मेरी पत्नी ये सब कुछ। तो वहां पर कुछ समय बाद एक शव यात्रा आई, राम नाम सत्य है, कम से कम तब तो बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसे मुर्दे को लेते हुए। तो ये साधु पुरुष ने दिखाया, देख उस ध्यान से देख उस शव यात्रा को, ध्यान से देख, ध्यान से देख, उसको कुछ समझ में नहीं आया। फिर इस साधु पुरुष ने कहा, मैं समझाता हूं, तूने देख लिया ना क्या हो रहा है वहां पर, चार लोग उठाए हुए कंधे पर, ऊपर उसके ऊपर वो मुर्दा है, मुर्दा मुर्दा मतलब मर गया है, मर गया मतलब जिंदा नहीं है, और तू मुझसे मांग रहा है कि मुझे एक ऐसा शरीर जो जो मेरा साथ दे, मुझे एक ऐसी पत्नी दो जो उम्र भर जन्मों जन्मों तक। तो साधु पुरुष ने कहा, अरे कौन सा शरीर, कौन सी पत्नी, कौन से बच्चे उम्र भर तेरा सहारा बनेंगे, यहां देख ये मुर्दे को ले जाते हुए भी ये कंधे बदल रहे हैं। होता है ना, मुर्दे को जब उठाकर ले जाते हैं तो वहां पर भी थक के कंधे बदल, यार अब तू उठा, बहुत भारी, पता नहीं कितना खा के मरा ये। तो वहां पर ये साधु पुरुष ने उनकी उस व्यक्ति की आंखें खोली कि अरे छोड़ दे, छोड़ दे ये तेरी आकांक्षा कि तुझे कोई उम्र भर तेरा सहारा देगा, यहां पर तो जनाजे में भी कंधे बदलते हैं लोग। एक बार एक दंपति वो प्रार्थना कर रहे थे, देवता से प्रार्थना कर रहे थे, तो पति ने पत्नी से पूछा, क्या प्रार्थना की तुम? मैंने यही प्रार्थना की कि आप मुझे पति के रूप में मिले सातों जन्म तक। पत्नी ने पूछा, आपने क्या प्रार्थना की? मैंने ये प्रार्थना की कि मेरा सातवां हो। तो खैर आजकल भौतिक संसार में रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि अपने आप ये साक्षात्कार थोड़ा आता रहता है, डिटैचमेंट आता रहता है, लेकिन अटैचमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर भगवान शिव जी हमें उस स्मशान भूमि की राख के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि इस संसार में चाहे हम कितने भी बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर लें, सब राख होने वाले हैं। सो द लेसन ऑफ इम्परमनेंस and futility is taught by the ashes on Lord Shiva. Why Trishul? समझ गए होंगे आप लोग। To remind us of the three modes and the threefold miseries of this material world. और दुर्गा देवी जो उनकी अर्धांगिनी है, अधिकांश भगवान शिव जी का त्रिशूल उनके हाथ रहता है, और दुर्गा देवी कौन है? वो अधिष्ठात्रा देवी हैं हमारे इस कारागृह की। हम लोग सब जो जेल के अंदर हैं इस भौतिक संसार के, उसके जेलर हैं दुर्गा देवी, जिनके हाथ में त्रिशूल, त्रिताप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। और फिर ये जो तीन गुण के अंदर हम अपने आप को खुद ही हथकड़ियां बांध बांध कर कारागृह में घूम फिर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि वाह मैं कितनी प्रगति कर रहा हूं इस कारागृह के अंदर, देखो मेरी जो हथकड़ी है सोने की बनी हुई है, सोने की हथकड़ी है। तो चाहे कोई सत्वगुण में हो सोने की हथकड़ी से बंधा हो, चाहे कोई तमोगुण में हो लोहे की हथकड़ी से बंधा हो, हथकड़ी का अर्थ है बंधन। तो त्रिशूल, त्रिताप और तीन जो गुण हैं इसका प्रतीक है। अब त्रिशूल के ऊपर डमरू है, तो ये डमरू क्यों? डमरू देखते ही हमें तो मदारी का खेल याद आता होगा, मदारी का डमरू बजा रहा है, ओ जमूरे कूद के बता। लेकिन यहां शिवजी हमें क्या सिखा रहे हैं? टू टीच अस टू क्रिएट ऑस्पिशियसनेस। वो जो डमरू जब बजाते हैं भगवान शिव जी कीर्तन करते समय, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम उनका गुणगान करते हुए जब डमरू बजाते हैं तो इट क्रिएट्स ऑस्पिशियसनेस। ऑल्दो लॉर्ड शिवा इज हिमसेल्फ ऑल ऑस्पिशियस, बट व्हेन ही प्लेज हिज डमरू, हिज ड्रम creates all the more auspiciousness amongst the threefold। इसलिए उसको लगा के भी रखते त्रिशूल के साथ। ये बता रहे हैं कि हां हम लोग त्रस्त होंगे त्रिताप से और तीन गुणों से, परंतु यदि शिवजी का डमरू अर्थात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यदि यदि उस डमरू की कीर्तन की ध्वनि को हम इस कलयुग में अपने साथ रखें हर समय, तो चाहे त्रिशूल हमारे ऊपर गर्दन में धस रहा होगा, परंतु वो जो डमरू की आवाज है वो डमरू उसके साथ हमें हमारा उद्धार करेगा। पांचवा जो चिन्ह है रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की जो मणि है, रुद्राक्ष की मणि के विषय में बताया गया है रुद्र अक्ष। शिवजी का एक नाम है रुद्र अक्ष, भगवान शिवजी की आंखें। रुद्राक्ष मणि की कथा इस प्रकार से है कि एक राक्षस था जिसका नाम था तारकासुर। ये राक्षस के तीन पुत्र थे जो भगवान शिवजी के अनन्य भक्त बने, शिवजी के डिसाइपल्स बने। शिवजी ने बहुत पर्सनल ट्रेनिंग इनको दी, परंतु शिवजी की पर्सनल ट्रेनिंग सानिध्य के बावजूद ये तीनों तारकासुर के पुत्र ये आगे चलकर विषयी बन गए, राक्षसी बन गए। तो शिवजी ने जब देखा उनका पतन, फॉल डाउन, तो शिवजी के आंखों से आंसू प्रवाहित हुए, और वो आंसू के बूंद, शिवजी के आंसू के बूंद साधारण नहीं हो सकते, वो अश्रु शिवजी के वो जब जहां पर गिरे वहां से ये रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ। और फिर ये जो तीन पुत्र, इन्होंने जब भगवान शिवजी के आंखों के आंसुओं को देखा और उन आंसुओं से जो ये रुद्राक्ष का पेड़ उसकी उपज हुई, तो वो फिर पुनः वो सही धर्म के मार्ग पर आ गए। तो इसलिए रुद्राक्ष किसका प्रतीक है कि जहां कहीं पर भी इस भौतिक संसार में हमें ऐसे ऐसे नेगेटिव इविल इंफ्लुएंसेस में घूमना पड़ता है, तो रुद्राक्ष जो है वो भगवान शिवजी की जो करुणा के आंसू हैं उससे ये सारे नेगेटिविटीज दूर करते हैं। तो भगवान शिव जी ये दर्शा रहे हैं कि उनकी करुणा को धरोहर के रूप में हमें लेकर अपने साथ चलना है। ये तात्पर्य रुद्राक्ष का है। जो चंद्रकोर है, क्रेसेंट मून, बहुत सुंदर भगवान शिव जी की जटा के ऊपर ये दिखता है। और कहा गया है कि कवि कर्णपुर कहते हैं कि ये जो चंद्रकोर है इस पर अमृत विराजमान है। इसलिए जब अघासुर अघासुर का वध हुआ तो सबसे ज्यादा प्रसन्न शिवजी हुए अघासुर के वध के पश्चात, क्योंकि शिवजी वो जानते थे ये किस परिवार से है, पूतना बकासुर, उस परिवार का ये अघासुर। इसका नाम अघ असुर, जो पाप से बना हुआ असुर, अघ का अर्थ है पाप। तो शिवजी इतने प्रसन्न हुए, हालांकि बाकी सारे देवी देवता जश्न मनाने आए अघासुर के वध के पश्चात, वो भी डरे हुए थे। जब तक वध नहीं हुआ तब तक वो आए नहीं, क्योंकि इन केस अगर भगवान से नहीं मारा गया वो, तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। फिर अगर हम हंसेंगे तो, यदि हम प्रसन्न हो जाएंगे तो। इसलिए उसका खात्मा हुआ, उसके पश्चात सब आए, गंधर्व किन्नर सब आए, अपने वाद्य लेकर उत्सव मना रहे हैं। उनके बीच में शिवजी, उनको जब पता लगा महेश लोक में, जब उनको पता लगा तो शिवजी आ गए और शिवजी नृत्य करने लगे। अब शिवजी का नृत्य ऐसा नृत्य, और उनको कोई ये इनके वाद्य की जरूरत नहीं थी स्वर्गलोक के वाद्य की, उनका डमरू ही काफी था। उनका डमरू और उनके स्टेप्स वही काफी थे, सब लोग साइड में हो गए। जैसे होता ना हमारे कीर्तन में, यदि कोई घमासान नर्तनकार आ जाए तो बाकी सब साइड में हो जाते हैं। फिर तो सब वो जो नाच रहे थे सब साइड में हो गए। शिवजी का डांस देख रहे हैं, शिवजी डांस कर रहे हैं, और डांस करते करते वो अपने गले में खोपड़ियों की माला पहन कर आए थे। देखो हम लोग व्यासासन पर स्पीकर को कौन सी माला पहनाते हैं, गुलाब की, राधा रानी का महा गार्लैंड, शिवजी खोपड़ियों की माला, और नाच रहे हैं तो पूरी एक एक को खोपड़ी ऐसी हिल रही है सब। और ये जो चंद्र जिसके ऊपर कवि करुणपुर कहते हैं कि अमृत विराजमान है, वो छलकने लगा, क्योंकि भगवान जो इतना हिल रहे थे शिवजी, तो छलक कर इन खोपड़ियों पे गिरा। अमृत गिरा तो होगा क्या, पुनर्जीवित हो गए, और वो सब जो भी जैसे भी रूप में थे वो अपना रूप उन्होंने पुनः ले लिया, और वो भी डांस करने लगे शिवजी के साथ। वो सब देख रहे हैं इस सीन को। तो ये उनका जो चंद्र है वो दर्शा क्या रहा है, अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। द मून इज द प्रिजाइडिंग डीटी ओवर आवर माइंड, सो द मून, क्रेसेंट मून ऑन लॉर्ड शिवाज मैटेड लॉक ऑफ हेयर सिग्निफाइज कंट्रोल ओवर आवर माइंड। कि जब भी हम शिवजी की जटाओं में उस चंद्र कोर को देखें तो हमारे मन को कैसे नियंत्रण में लाना है वो शिवजी हमें सिखा रहे हैं। सेवेंथ, नंदी द बुल, नंदी बैल। तो इनके विषय में भी एक बहुत सुंदर कथा है कि नंदी एक बार भगवान शिवजी और पार्वती वो चौसर खेल रहे थे। तो अभी कोई अंपायर होना चाहिए, तो उन्होंने शिवजी ने नंदी को बुलाया कि भाई तुम एम्पायर बनो। तो नंदी एम्पायर अब, तो हुआ क्या कि शिवजी हार गए। अब शिवजी हार गए फिर भी नंदी जो है उन्होंने डिसीजन दे दिया कि नहीं 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 ये जीते हैं, क्योंकि उनके वाहन है। तो पार्वती को बहुत क्रोध आया कि ये क्या, ये तो तरफदारी है, ये चीटिंग है। तो उन्होंने शाप दे दिया नंदी को कि नंदी, क्योंकि नंदी के अंदर एक ऐसा गुण है, शिवजी ने उनके अंदर एक ऐसा गुण दिया है कि उनको कभी कोई रोग नहीं हो सकता। तो पार्वती ने वही दिया, रोगी बन जा। अब ये शिवजी की सेवा कैसे करें, अगर हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे तो कैसे उठा कर ले जाएं शिवजी जहां पर भी जाना। तो इसलिए ये पार्वती से क्षमा याचना करने लगे। तो फिर पार्वती ने कहा ठीक है, जो नंदी तुम्हारा सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ है, क्या है, घास, वो सैक्रिफाइस तुमको करना होगा रोज, किसको, गणपति को देना होगा, मेरे बेटे गणेश को देना। इसलिए गणेश जी को जो घास ऑफर होता है ना, वो क्या है, वो ये लीला के पीछे है घास, कि नंदी का जो घास का शेर है, एकदम फ्रेश ग्रास, उसका जो शेर है वो शेयर करते हैं गणेश जी से पार्वती के कहने के ऊपर। लेकिन हमारे लिए लेसन क्या है वो पढ़िया, नंदी रेंडर्स हर्क्यूलियन सर्विसेज व्हाइल ईटिंग ओनली सम ग्रास। तो लेसन हमारे लिए क्या है, डिमांड लेस एंड सर्व मोर। इस संसार में उल्टा हिसाब है कि भाई जितना डिमांड कर सको उतना डिमांड कर लो, जितनी कम सेवा हो सके उतनी कम से कम सेवा करो। एक व्यक्ति इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू में वो जो कंपनी का मालिक था वो पूछता है, भाई व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, तो कहता है सर 2 लाख सैलरी महीने की, 2 लाख सैलरी चलेगी, एक गाड़ी ठीक है, 4 BHK का फ्लैट, एक मोबाइल, ऐसे ऐसे लिस्ट बना रहा था। तो बॉस ने कहा, जो इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, हम आपको 4 लाख सैलरी देंगे, आपको 2 गाड़ियां देंगे, आपको हम 4 सेलफोन देंगे, ऐसे डबल डबल करके। वो तो ये क्या सर मजाक कर रहे हो? इसने कहा शुरू किसने किया था? तो ये स्थिति है हमारी, जैसे कहते हैं ना, एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। तो हम सबको ऐशो आराम सब चाहिए, लेकिन सब एकदम स्कीम्स में चाहिए, ये स्कीम, ये डील, वो डील, सब पैकेज इसके अंदर चाहिए। तो नंदी हमें क्या सिखा रहे हैं, डिमांड द लीस्ट एंड सर्व द मोस्ट। नेक्स्ट सिंबल, वाई डियर स्किन, इट रिप्रेजेंट्स अ लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी एंड रेनाउंसिएशन, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जैसे वो प्रसिद्ध कथा है, शिवजी के समक्ष पार्वती एक दिन गई और कहा कि सबका एक एक घर है, हमारा कोई घर ही नहीं है, हम केवल पर्वत पर रहते हैं और पेड़ों के नीचे, कभी इस पेड़ के नीचे कभी उस पेड़ के नीचे, कम से कम एक घर तो बनाओ, इतना टाइम हो गया हमारी शादी को। तो शिवजी कहे ठीक है, तो उन्होंने घर बनाया। अभी गृह प्रवेश का जो समारोह, उसमें बड़े बड़े जो दिग्गज, सबको समाचार मिल गया कि अरे शिवजी का घर बन रहा है, शिवा रेसिडेंसी, शिवजी का घर बन रहा है, ईश्वर रेसिडेंसी, भगवान शिवजी को ईश्वर भी कहते। तो शिवजी का घर बन रहा है, तो इतने सालों बाद, इतने अरसे बाद, सालों नहीं सदियों के बाद शिवजी का घर बन रहा है, कैसा घर होगा, शिवजी का घर कैसा हो। सब लोग गृह प्रवेश के लिए एक एक कर कर, पूरा बड़ा फंक्शन, पार्वती इतनी खुश थी, लास्ट में साधु सब आए, उनको सबको अलग अलग भेंट शिवजी ने दी, जैसे कि वो हैं उदार हृदय वाले, तो सबको दे रहे थे। लास्ट में एक साधु बच गए, कुछ नहीं, सारे गिफ्ट्स खत्म हो गए। तो उनके पास वो शिवजी पूछे कि भाई क्या मैं दूं अभी तुमको, कुछ भी नहीं बचा रह गया, एक ये बस मेरा घर ही बचा है, ये ले ले, ले जा, तो ले जाए। वहां पार्वती वो सबको खिला रही थी प्रसाद वसाद, यहाँ पर घर की चाबी वाबी देकर शिवजी चले, बोले कि चलो भाई वापस से पेड़ के नीचे, क्यों दे दिया, वो भी दे दिया, एकलौता घर बनाया था पूरे उनके पूरे जीवन काल में, वो भी दे दिया। सिंप्लिसिटी यहां पर वो सिखा रहे हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आजकल का जीवन क्या है, सिंपली लिविंग नो थिंकिंग, या फिर हाई लिविंग एंड सिंफुल थिंकिंग, सिंपल नहीं सिंफुल थिंकिंग। तो उदाहरण दिया गया है कि जैसे गिद्ध, वल्चर, गिद्ध कितने ऊपर उड़ता है, हाई लिविंग, लेकिन उसकी नजर कहां होती है, कहां पर मांस का टुकड़ा नीचे, कौन सा मुर्दा, कहां पर क्या मरा हुआ, हर समय कटा हुआ मांस, यहां फेंका हुआ, सड़ा हुआ मांस, उसकी नजर हर समय उस पर रहती है। इसलिए आजकल कलयुग में आप देखोगे लोग बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहे हैं गिद्ध की तरह ऊपर, लेकिन नजर कहां होगी? एकदम जो नगण्य इंद्रिय भोग है, जैसे गिद्ध की नजर हर समय सड़े हुए मांस के ऊपर रहती है। उसके विपरीत एक चकोर है जो नीचे रहता है, ज्यादा ऊपर उड़ता नहीं, लेकिन उसकी नजर हर समय चंद्र के ऊपर रहती है। तो शिवजी यहां पर यह सिखा रहे हैं व्हाट इज सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। फिर वाय द ब्लू थ्रोट, नीलकंठ जिसकी हमने चर्चा की, लिविंग अ सेल्फलेस लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस फॉर अदर्स। शिव जी ये बता रहे हैं, तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायशो जना परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य खिलात्मनः, कि यदि भगवान श्री कृष्ण की परम आराधना करनी है तो दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दो। ये शिव जी नीलकंठ, क्योंकि देखिए विष को पीना और अपने उस विष को यहां पर रखना, और वो ऐसा विष था कि केवल उसके धुएं से कोई मर जाए, उस विष के धुएं से, ऐसे विष को यहां पर हर समय रखना, ये केवल शिवजी जैसे महान साधु ही कर सकते हैं, और वो नीलकंठ के द्वारा हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। फिर अंतिम गंगा को जो धारण किए, गंगाधर, उनका एक नाम क्या है, शिवजी का एक नाम है गंगाधर, गंगा को जिनने धारण किया, तो ये जो जिसे कहते हैं ना, अगर कोई केक होता है तो आइसिंग ऑन द केक, तो भगवान के इतने सारे शिवजी के जो गुण हैं उसमें जो सर्वोपरि ये जो गुण हैं गंगा को धारण किए हैं अपने जटाओं पर, सिग्निफाई सरेंडर टू लॉर्ड विष्णु बाय होल्डिंग हिज फुट वॉश ऑन हिज हेड। तो जितने सारे गुण अभी तक शिवजी के हमने चर्चा किए, वो सारे गुण के ऊपर भगवान शिव जी उनको इतना वैल्यूबल बनाए हैं, क्योंकि वो हर समय भगवान श्री विष्णु पादी, मतलब गंगा का एक नाम है विष्णु पादी, कि भगवान विष्णु के जो चरण कमलों से निकली शिव जी ने उसको धारण किया, गंगा को जो धारण किए, और फिर हमें प्राप्त होती है शिव जी के जटाओं से जो आती है। तो ये सरेंडर अनटू लॉर्ड विष्णु, ये शिवजी हमें सिखा रहे हैं। तो अब कुछ मिनटों में हम केवल शिवजी और भगवान श्री हरि, हरि हर, ये जो बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है इनका, इनका घनिष्ठ प्रेम जो है वो हम किस प्रकार से देखेंगे, कि शिवजी इनकी व्यक्तिगत साधना इन सारी चीजों में वो हर समय लगे रहते हैं, वो जो ध्यान में बैठे रहते हैं तो क्या उनका जीवन है, वो ये सब है, श्री कृष्ण ध्यान, श्री कृष्ण भजन, श्री कृष्ण अध्ययन, श्री कृष्ण प्रसाद सेवन, श्री कृष्ण की निस्वार्थ सेवा। हालांकि एक एक पॉइंट के ऊपर उनकी लीलाएं हैं, मुद्दे हैं, लेकिन हमारे पास अभी इतना समय नहीं है, तो केवल संक्षिप्त रूप में समझ लीजिए कि यदि कोई भगवान शिवजी की आराधना को समझना चाहता है तो भगवान शिव जी की आराधना ये सब है, और यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण वो शिव प्रेम, जैसे कि हम कृष्ण प्रेम की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से शिव प्रेम की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि कैसे मैं शिव जी को मेरे हरेक धाम में उसका रक्षक बनाता हूं। सबसे पहले आप विश्वास नहीं करेंगे, यहां पर भी श्री श्री राधा मदन गोपाल जी का इंस्टॉलेशन हुआ 2011 23 मार्च, और राधा मदन गोपाल जी के इंस्टॉलेशन के ठीक कुछ हफ्ते पहले यहां शिवजी का जो मंदिर है उनके प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये शिवजी का मंदिर खुला राधा मदन गोपाल जी आने से पहले। तो जहां पर भी आप देखो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ अपनी लीला करने आते हैं, गोपीनाथ हैं, गोपीनाथ के बगल में बाबुलनाथ है, वृंदावन में आप जाओ वहां पर गोपीश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव, सब जगह पर शिवजी जो हैं वो धाम रक्षक की भूमिका निभाते हैं। और भगवान स्वयं शिव जी की आराधना किए, रामेश्वर धाम जो है जहां पर रामचंद्र जी स्वयं भगवान शिव जी की आराधना करते हैं और पार्वती सीता से कहते हैं कि शिवलिंग अपने हाथों से बनाओ, और वो जो धाम बना रामेश्वर धाम। और कठिन से कठिन, सबसे ज्यादा कठिन सेवा जब भगवान को किसी को देनी होती है तो केवल एक ही व्यक्ति को याद करते हैं, और वो जानते हैं कि केवल यही हैं जो सक्षम हैं, जो मुस्कुराते हुए प्रसन्नचित तरीके से वो इस सेवा को निभाएंगे बखूबी, वो है शिव जी। इसलिए जब वो हलाहल विष पीने की बात आई तो सारे देवता डर गए कि कौन इसको लेगा, तब भगवान ने कहा कि एक ही व्यक्ति पी सकते हैं और वो है शिव जी। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये श्लोक है जहां पर भगवान राधा रानी से कह रहे हैं, हे राधे, मैं नंदी के रूप में शिव जी को अपने पीठ पर लेकर घूमता हूं, क्योंकि तीनों लोकों में उनसे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। एक कथा ऐसी भी हुई जहां पर नंदी का रूप, भगवान शिव जी का ऐसा सानिध्य चाह रहे थे, मिस कर रहे थे भगवान को, शिव जी को, परंतु बताना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने नंदी का रूप लिया और शिव जी को अपने, भगवान कृष्ण ने नंदी का रूप लिया और शिव जी को अपने पीठ पर विराजित किया। शिव परिवार, ये जो फैमिली फोटो है इनका, ये बहुत सुंदर शिक्षा हमें दे रहे हैं, पूरा शिव परिवार। और क्या फेमस जो इसमें लेसन ये है कि कितने सारे जो सदस्य हैं आपस में प्रतिद्वंद्वी हैं। जो सिंह है वो बैल को खाता है, जो सर्प हैं वो चूहे को खाते हैं, जो कार्तिकेय का वाहन है कौन है, मोर, वो सर्प को खाता है। तो देखो ये सारे जो एक दूसरे के वाहन हैं, एक दूसरे को खाने वाले वाहन हैं, लेकिन शिव पार्वती के साथ ये सब प्रेम से रहते हैं। हालांकि बाहरी रूप से ये एक दूसरे के कातिल हैं, लेकिन जब शिव पार्वती के साथ ये लोग फैमिली में रहते हैं तो प्रेम से मिलजुल कर। और आजकल क्या हम देखते हैं कि एक ही सरनेम है, एक ही ब्लड ग्रुप है, सबके रोगों में एक ही खून दौड़ रहा है, एक ही खानदान के हैं, एक ही छत के नीचे, लेकिन कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं। तो यदि हमें हमारे घरों में द्वंद्व क्लेश दिख रहा होगा तो ये फोटो लगा लो, शिव परिवार, शिव परिवार को देखो कि क्या उदाहरण उन्होंने स्थापित किया है, कि कैसे भगवान को केंद्र में, ये ध्यान में रखना कि भगवान को केंद्र में रखते हुए कैसे पूरे परिवार में हम उसको क्लेश रहित कर सकते हैं। और ये आदि वराह पुराण का अंतिम श्लोक है, जिस श्लोक के द्वारा हम समझ पाएंगे कि भगवान शिव जी हमें क्या सिखा रहे हैं। कई जन्मों तक शिव जी की आराधना करने से व्यक्ति बुद्धिमान और पापों से मुक्त होता है, तब जाकर वो वैष्णव बनता है। तो यदि हम लोग यहां पर, एक तो दिलासा हमको अपने आप को दिला देना चाहिए कि हम लोग जो श्री चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में वैष्णव की भूमिका निभा रहे हैं, तो कई जन्मों से हम लोग शिव जी की आराधना कर चुके हैं, ये समझ लेना, और उस प्रकार का आदर सत्कार उनका करते हुए हम शिव जी को अपना आराध्य देव, अपना महाजन, रोल मॉडल, जो जो उन्होंने अपने चिन्हों के द्वारा हमें शिक्षा दी उसका पालन करते हुए यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अवश्य ही हम भगवान शिव जी के पद चिन्हों पर चलते हुए भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त करेंगे। बोल भोलेनाथ शंभू शिव शंकर की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रीमान गौरांग महाप्रभु की, शिल प्रभुपाद की, दाई गौर प्रेमानंदी।